मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 19 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुशीला जाट, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, गोकुल महाजन, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, अंजू, आप जड़वाला सिरसा हरियाणा से हैं, पिंटू कुमार, आप चंदौर बेगूसराय बिहार से हैं, स्वाति श्रीवास्तव, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और बलिया उत्तर प्रदेश से ही हैं प्रियंका सिंह। तो सुशीला, गोकुल, अंजू, पिंटू, स्वाति और प्रियंका, आप सभी 6 मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे ऊंची विकास दर के उपाय, इस पर बात करूंगा। इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूं उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। इनफैक्ट सच पूछे तो आज कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खबरें तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जरूर हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं। देखिए दोस्तों, जब सिविल सर्विस में मार्क्स स्कोर करने की बात आती है कि आप कैसे मार्क्स स्कोर करें, प्रश्न मेरा भी बहुत अच्छे से तैयार था, आपका भी बहुत अच्छे से तैयार था, हम दोनों ने एक ही किताब से पढ़ाई की, एक ही तरह के लेक्चर सुने, सब तैयारी लगभग लगभग एक ही तरह से हुई, लेकिन मार्क्स एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका कारण यह होता है कि हम सब ने किया तो एक जैसा, लेकिन सवाल यह है कि एग्जामिनेशन की जो कॉपी है क्या उसमें भी हमने एक जैसा किया है? उसमें कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि पढ़ने का तो एक विज्ञान है, लेकिन लिखने का इनफैक्ट कोई वैसा विज्ञान नहीं होता है। लिखना एक कला है, यानी कि आंसर राइटिंग एक कला है, लेकिन एक ऐसी कला है जो बिना विज्ञान के सधती नहीं है। अर्थात जब आप उत्तर लिखें तो बहुत जरूरी है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके उत्तर एग्जामिनर के दिमाग में आपके बारे में 2 धारणाएं बनाने में सक्षम हो। पहली कि आप बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तथ्यपूर्ण तरीके से कहने का मतलब है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है और उसके लिए आप बकायदे तथ्य दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, वास्तव में वो बहुत प्रभावशाली है और कुछ इस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं कि आपके तथ्यों से ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने समय के प्रति सतर्क हैं। कंटेम्प्रेरी जो टाइम है उसके प्रति आपके नाक, कान, आंख, शरीर, त्वचा, यानी कि शरीर की समस्त इंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आप कह लीजिए शरीर को तो हम किनारे कर दें, आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं। एग्जामिनेशन के दिमाग में अगर आप ये बात बैठा पाए तो ये मान करके चलिए कि आपके बराबर कोई दूसरा नंबर नहीं पा सकता। ये बात खासकर मैं कल के न्यूज की एक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कह रहा हूं। मित्रों, कल के न्यूज में, रेडियो न्यूज में स्पेशली आपने कुछ डेटा सुने होंगे, डेटा बताया गया और बकायदे वो डेटा भले ही सरकार के ही दिए गए क्यों ना हो, देखिए हम सरकार के दिए गए डेटा को आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने वो आंकड़े दिए हैं और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो बटने चले कि आपको उन आंकड़ों पर कहीं ना कहीं तो भरोसा करना होगा। हाँ, उनकी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वे आंकड़े ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में दिए गए हैं, यानी कि संसद को बताए गए हैं। संसद को बताने का मतलब हुआ कि राष्ट्र को बताए गए हैं, यानी कि उन आंकड़ों पर हमें विश्वास करना चाहिए या फिर उन आंकड़ों पर बहस करनी चाहिए। अब आप देखिए कि कल संसद में कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और ये ऐसे आंकड़े हैं जो लंबे समय तक काम आएंगे, कम से कम 1 साल तक तो काम आएंगे ही। और बहुत ज्यादा आपको आंकड़ों के जाल में अपने आप को फंसाना नहीं है, बहुत थोड़े से आंकड़े लेकर के और उनका इस्तेमाल करना सीखना है। तो कुछ आंकड़े देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कल की न्यूज में, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं और बेहतर होगा कि आप इन आंकड़ों को नोट कर लें। हां, अब आप इनका इस्तेमाल कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कितने खूबसूरती के साथ कर पाएंगे, यह एक कला है जो आपको सीखनी चाहिए या आप ऑलरेडी जानते होंगे। एक बात, कई बातें कही गई हैं, उसमें से एक बात यह है कि जो आंकड़े बताए गए हैं वो 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है एक तरफ है, और दूसरा है 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो गया है, है ना। फाइनेंशियल ईयर को हम लेकर के चलते हैं और जनरली हमारे यहां आंकड़े इसी तरह से बताए जाते हैं। तो देखिए एक आंकड़ा जो दिया सरकार ने वो ये दिया है कि इस दौरान 14-15 और 17-18 के दौरान, इस दौरान जो औसत वृद्धि दर रही है हमारे देश की वो 7.3% रही है। औसत वृद्धि दर मतलब आर्थिक वृद्धि दर, औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.3%, और यह वृद्धि दर विश्व की सबसे अधिक वृद्धि दर है। देखिए सेकंड पोजीशन पे तो चाइना है जो लगभग 6 के आसपास दिखाता है, 7.3%। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और बहुत अच्छी वृद्धि दर भी है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें तो 1.5-2% ही रह गया है, उसको देखते हुए 7.3%। दूसरी बात, ईयर बेस ईयर यही है, 2014-15 से लेकर के 2017-18 का वित्तीय वर्ष, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में क्योंकि टाइम के बिना इन आंकड़ों का फिर कोई महत्व नहीं होगा। उसमें यह बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय में 30% की वृद्धि हुई, 30% इनकम बढ़ी। यानी कि मान लीजिए कि 2014-15 में कोई व्यक्ति 1,000 रुपए कमाता था तो 17-18 में उसने 1,300 रुपए कमाए, यानी कि 30% उसने और ज्यादा कमाई। अब सच्चाई जानने के लिए उसकी वास्तविक कमाई कितनी हुई, तो इसमें से आपको महंगाई दर को घटाना होगा। खैर, अब उन पे अगर हम आ गए तो फिर मुख्य विषय तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सरकार ने यह भी कहा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है 2014-15 के दौरान, उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो था 2.6% विश्व की अर्थव्यवस्था में, 2.6%, जो 17-18 तक बढ़कर 3.2% हो गया। मतलब विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी थोड़ी सी बढ़ी है, और बट नेचुरली कि यह भागीदारी हमारे निर्यात के माध्यम से ही बढ़ सकती है, ठीक है। अब यहां आपको इसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको यह देखना है कि देखिए हमारे यहां विश्व की आबादी का कितना परसेंट है, 16%। विश्व की आबादी का 16% है लेकिन हमारी भागीदारी कितनी है, अगर बढ़ी हुई के लिए 3.2% तो अभी बहुत कम है, बहुत संभावना है। खैर, वो विश्लेषण की बात है। तो मित्रों, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। इसके साथ ही साथ दो और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे जो आपको मालूम होने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता लग सके कि आप अपने समय के प्रति सतर्क हैं। और उसमें एक है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 12 क्षेत्रों की पहचान की है। अब वो 12 क्षेत्रों की डिटेल्स आएंगी, है ना, या फिर आप देख लीजिएगा। 12 क्षेत्रों की पहचान की है। सीधी सी बात है कि जब हम निर्यात बढ़ाएंगे तभी विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। और फिर एक स्टेटमेंट है सरकार का कि जो भारत का जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, सिविल एविएशन का जो सेक्टर है, यह दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। हम नागरिक उड्डयन के मामले में सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार जगह जगह पर एयरपोर्ट बना रही है, पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, और किस तरीके से उड़ान योजना शुरू की गई है, और लगातार जो छोटे छोटे स्थान भी हैं वो एक दूसरे से वायु मार्ग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश हो रही है, एयरलाइंस चलाई जा रही हैं और लोगों की आय बढ़ रही है। तो बट नेचुरल है कि लोग अब एयर ट्रेवल को ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ आंकड़े थे, ये आप देख लीजिएगा। एक खबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशली, और वो है पोलर वोर्टेक्स के बारे में। पोलर वोर्टेक्स, ये पोलर वोर्टेक्स क्या है? देखिए, ये ज्योग्राफी मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। दरअसल ये जो पोलर वोर्टेक्स है, एक वेदर का सिस्टम है, एक मौसम की प्रणाली है जो अभी अमेरिका और कनाडा के ऊपर बन रही, अमेरिका और कनाडा जिसके संकट में आने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि अब एक तो है पोलर, पोलर का मतलब है ध्रुव, आप जानते हैं वोर्टेक्स। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, इन ध्रुव के ऊपर जब लो प्रेशर होता है, जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा क्लास लेक्चर को याद करने की कोशिश करें, तो जब लो प्रेशर जोन बन जाता है तो बट नेचुरल है कि वहां फिर सिर्फ बर्फीली हवाओं के कारण लो प्रेशर जोन पड़ता है और इसके बाद वो फिर अमेरिका और कनाडा की तरफ आना शुरू होता है। तो बट नेचुरल है कि जब बर्फीली तूफान कह सकते हैं, पोलर पर बनने वाला बर्फीला तूफान अब आ रहा है और कनाडा और अमेरिका आप देखेंगे नक्शे में तो काफी नजदीक पड़ते हैं इधर आए हवा के आने से, फिर बट नेचुरल है कि कनाडा और अमेरिका ठंड से जमने लगेंगे और ये आशंका पैदा की जा रही है कि अमेरिका और कनाडा का इससे फिर जो टेम्परेचर है वो बहुत जबरदस्त रूप से गिर जाएगा और हो सकता है कि वहां जबरदस्त रूप से बर्फबारी हो, जो एक तरह से असामान्य स्थिति वहां की हो सकती है। तो ये है पोलर वोर्टेक्स के बारे में, जनरल स्टडीज की दृष्टि से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, करंट कंटेंट के तहत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो है आयुष्मान भारत से जुड़ी आशंकाएं। मतलब आयुष्मान भारत योजना सरकार ने शुरू की है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनको लेकर के क्या क्या आशंकाएं हैं। देखिए, ये जो लेख है ये अमिताभ कांत जी का लिखा हुआ लेख है, जानते हैं नीति आयोग के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बेसिकली आईएएस ऑफिसर है 1980 बैच के, उन्होंने ये लेख लिखा है। तो मतलब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया लेख है, तो ये लेख भी आपके लिए इक्वली महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लेख आप सब दोस्तों जरूर पढ़ें। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के बारे में आज मैं ज्यादा बात आपसे नहीं करूंगा और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी विषय को लेकर के मैं आप सबको डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का लिखा हुआ एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं, जो दैनिक जागरण में छपा है और उस लेख का शीर्षक ही ऊंची विकास दर का नायाब नुस्खा। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें उन्होंने बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। उनका यह मानना है, जो उन्होंने अपने लेख की स्थापना की है, कि देखिए अभी तीन राज्यों में चुनाव हुए और तीन राज्यों में चुनाव में सरकार बदल दी गई, राइट? तो उसका उन्होंने मानना है कि इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अभी जो हमारी विकास दर है उस विकास दर से लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान अलग परेशान है, तो उसे संतुष्ट नहीं है। चाहे हम भली कह दें कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन लोगों की समस्याओं का निराकरण इससे नहीं हो रहा है। ये तब ही होगा जब हम अपनी विकास दर को बढ़ाएं। लेकिन विकास दर को आप बढ़ाएंगे कैसे? क्या विकास दर बढ़ाना इतना आसान है? उसके उन्होंने उपाय बताए हैं और तीन उपाय उन्होंने इसमें सुझाए हैं। पहला तो यह है कि सरकार जो कल्याणकारी कदम उठा रही है, सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड जो दुनिया भर के प्रोग्राम चला रही है, उनका कहना है कि इसे बंद कर देना चाहिए। जैसे किसानों की कर्ज माफी को भी आप उसमें ले सकते हैं, मनरेगा को भी उसमें ले सकते हैं, और सरकार दुनिया भर की चीजें करती जा रही है, ये पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, आवास योजना, ये वो, उनका कहना है कि इसे बंद कर देना चाहिए। हालांकि आप सुनेंगे तो लगेगा कि हद होगा, कैसे बंद कर देना चाहिए, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। उन्होंने इनकी सच्चाई बताई है और सच्चाई बताने के बाद बताया है कि अगर इसको बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद जो पैसा बचेगा, वो जो पैसा बचेगा उसमें से आधे को आप डेवलपमेंट के काम में लगाइए। देखिए, वेलफेयर वर्क और डेवलपमेंट वर्क में फर्क है। वेलफेयर वर्क का मतलब तो है कि आप सीधे सीधे कल्याणकारी कामों के लिए दे रहे हैं, और डेवलपमेंट वर्क में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बेसिकली एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है, क्योंकि वो डेवलपमेंट आपको अर्न करके देगा। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा कल्याणकारी राज्यों कल्याणकारी कामों पर खर्च करने से बचेगा उसमें से आधे को आप डेवलपमेंट के काम में लगा दीजिए और आधे को जनता में फ्री बांट दीजिए। और उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया है कि अगर ऐसा किया गया तो प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में 7,000 रुपए दिए जा सकते हैं। एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो एक परिवार में हर साल हम 35,000 रुपए उनको दे सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास पैसा बचेगा जिससे हम डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो पहला, कल्याणकारी कामों को रोक देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन को फ्रीज कर देना चाहिए, यानी कि उनका वेतन अब जितना है उतना ही रहेगा। उसके भी उन्होंने तर्क दिए हैं, आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे जो आम आदमी प्राइवेट सेक्टर में और जब आम लोगों की जो कमाई है उसकी तुलना में जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन अधिकारियों के वेतन है वो 4.7 गुना है, 4.5 गुना है, जबकि दुनिया के जो दूसरे देश है उसमें वो लगभग दुगुना है। तो उन्होंने कहा है कि वेतन चूंकि बहुत अधिक है तो जब तक ये दुगुना नहीं हो जाता तब तक के लिए सरकारी वेतन की वृद्धि बंद कर देनी चाहिए, और फिर उन्होंने बताया है कि उससे फिर कितना पैसा बचेगा, उसको डेवलपमेंट के कामों में लगा दें। और इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार की कमी करनी चाहिए, और भ्रष्टाचार की कमी का भी उन्होंने बताया है कि बकायदे जनता के द्वारा गुप्त मूल्यांकन कराया जाना चाहिए, गुप्त रूप से, और गुप्त रूप से मूल्यांकन कराने के बाद जो भ्रष्ट पाए जाए उनमें से कुछ लोगों को निकाल देना चाहिए, 10% लोगों को निकाल देना चाहिए, तो इससे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मन में भय पैदा होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, तो भ्रष्टाचार से भी बहुत पैसा बचेगा और उसका काम भी डेवलपमेंट में लगा, उसका भी उपयोग डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाना चाहिए। इस तरह से सरकार के पास इतना पैसा आ जाएगा और डेवलपमेंट के काम इतनी तेजी से शुरू हो जाएंगे कि ऑलरेडी जो हमारे विकास की दर है वो बढ़ जाएगी। ये उन्होंने तरीका बताया है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मित्रों, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ें और पढ़ने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इसके आप नोट भी कर लें। इसी को कहते हैं कुछ अलग हटकर विचार, मौलिक विचार। तो मित्रों, आज आपको मैं बहुत से दूसरे आर्टिकल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लीजिएगा, आज के आर्टिकल्स की संख्या काफी है। अब मैं आता हूं सीधे सीधे ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, विनय मौर्य दिल्ली से, उमेश सैनी माधोपुर राजस्थान से, और निशु राजदेव। आप तीनों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।